ओम शांति। हम सबके बीच में आदरणीय भ्राता राजयोगी ब्रह्म कुमार राजू भाई उपस्थित हैं। हम आपका इस तपस्या योग भक्ति में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका जीवन ज्ञान योग और धारणाओं से युक्त जीवन है, इंस्पिरेशनल लाइफ है आपकी। अनेक प्रकार की सेवाएं करते हुए भी आपके जीवन में बाबा के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है और जो बाबा ने धारणाएं सुनाई हैं, उन धारणाएं वे आपके जीवन में दिखाई देती हैं। जैसे बाबा कहते हैं, हमारा जीवन दर्शनीय होना चाहिए। बचपन से ही कानपुर से आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त किया और अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जब आप यहाँ मधुबन आए 1971 में, तो आपको प्रेरणा हुई कि मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। तो 1972 से ही आपने अपना जीवन इन ईश्वरीय सेवाओं के लिए मधुबन में समर्पित किया। और आपके लौकिक परिवार से भी आपकी लौकिक बहन, पिताजी और अंकल सब समर्पित हैं अनेक प्रकार की सेवाएं। आपके ही लौकिक घर से, जहां आपका घर है, वहां से ही ईश्वरीय ज्ञान देने की भी शुरुआत हुई थी उस एरिया में। और यहाँ मधुबन में आप रोज मुरली जो सुनते हैं सेंटर्स पर, और मुरली से जो सार आप अपनी डायरीज में नोट करते हैं, प्रश्न उत्तर, वरदान, धारणा, सार और स्लोगन, तो बाबा की ही अव्यक्त मुरलियों से वो सारी प्रेरणाएं लेकर के, उनको शब्द रूप दे करके वो सेवा आप ही करते हैं। मैं समझती हूँ हर ब्राह्मण जीवन की डायरीज में, ब्राह्मणों की डायरीज में वो धारणाएं नोट हैं। और जो अव्यक्त इशारे अक्सर सेंटर्स पर बोर्ड पर लिखे जाते हैं, जो पत्र पुष्प आता है, तो वो अव्यक्त इशारे भी आप ही बाबा की मुरलियों से निकालते हैं और सभी के पुरुषार्थ के लिए विशेष सभी सेंटर्स पर जाते हैं। जब से आप इस यज्ञ में आए हैं, तब से लेकर के आप मुरली डिपार्टमेंट की इस सेवा का विशेष कार्य, वो पोस्टिंग वगैरह की सेवा का कार्य वो अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन उसका जो सारा स्टडी करके और उससे निकालना बाबा की प्रेरणाओं को और सार रूप में बाबा के बच्चों के आगे रखना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेवा है जो आप उसमें अपना योगदान देते हैं। यूं कहें कि आप जो बाबा कहते हैं कि बच्चे ज्ञान रत्नों से खेलते रहो, तो आपका सेवा का पार्टी ऐसा है कि आप सदा ही ज्ञान रत्नों से बाबा की मुरली में दिए हुए जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, उनसे सदा ही खेलते रहते हैं। दूसरा आपका जो पार्ट है इस यज्ञ में, जो हमारा ग्राम विकास प्रभाग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। उसके साथ साथ इस ग्राम विकास प्रभाग ने एक बहुत ही सुंदर आपको बाबा ने उसके लिए निमित्त बनाया, शाश्वत योगिक खेती। आपने उसके बारे में सुना होगा कि कैसे योग से खेती को सतोप्रधान बनाया जाता है। ये अगर मैं बाबा की अलौकिक भाषा में कहूँ, ये पूरा इनका साइंटिफिक प्रोजेक्ट है और इसको यूएन ने भी मान्यता दी है, और काफी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उससे भी संपर्क करके ये अपना कार्य, इसका रिसर्च का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। काफी गांवों में, काफी जो हमारे ऐसे स्थान है जैसे अमरावती है, अकोला है, या कोल्हापुर है, या अन्य स्टेट्स के, महाराष्ट्र के कुछ स्टेट्स के नाम, जगहों के नाम मुझे पता है, अन्य भी कई स्थान है जहाँ पर ये कार्य, गुजरात में पालनपुर, वहाँ ये कार्य चल रहा है। और मैंने खुद भी ये अनुभव किया है, हमारे बम्बई के एक भाई हैं जो पालनपुर में रहते हैं, और उनके ही संपर्क में एक भाई हैं जो गेहूं की खेती करते हैं वहाँ, तो उन्होंने यौगिक खेती का प्रयोग किया। ये पिछले साल अप्रैल की बात है, 2012 अप्रैल में मैं वहाँ पर गई थी, वो भाई का खास निवेदन था कि आप वहाँ पर आए, तो मधुबन से जाते जाते पालनपुर मैं वहाँ गई थी, तो उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि बहन ये यौगिक खेती की गेहूं है तो आप इसे लेकर जाइए बॉम्बे में। तो मैंने कहा कि इतना तो मैं ले जा नहीं पाऊंगी, और बम्बई में वैसे भी गेहूं बहुत सेफ रहता नहीं है, जल्दी से उसको कीड़ा लग जाता है, तो हम लोग तो गेहूं सेंटर पर ज्यादा हम आटा ही खरीद करते हैं। कहा नहीं बहन जी, थोड़ा तो आप लेकर ही जाइए। तो मेरे पास इतनी जगह नहीं थी, मैंने उनको कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे एक किलो जितना दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ, मैं उसका ज्वारा उगाऊंगी और उसको यूज करूंगी। तो मुझे था कि वो जरूर थोड़े दिनों में तो रहेगी नहीं, तो मुझे उसको फास्ट यूज कर लेना चाहिए, परंतु सेवाओं की बिजी होने के कारण मैं उस गेहूं को इतना यूज नहीं कर पाई, मेरे पास अभी तक भी पड़ा है। अदरवाइज मैं ये क्यों बता रही हूँ, बम्बई में अगर आप कोई भी अनाज बिना दवाई के रखते हैं या बिना कैस्टर ऑयल के रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है। लेकिन आज 1.5 साल लगभग होने को आया है, पिछली अप्रैल की बात है ये, वो अभी तक भी विदाउट एयर टाइट डिब्बे के वो अभी तक भी सेफ है। तो ये योग का परिणाम है जिसका रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च आप और आपकी टीम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी रिसर्च जो कॉमन मैन के लिए भी यूजफुल है, और मैं समझती हूँ हर व्यक्ति के लिए यूजफुल है। ये ग्राम विकास विभाग है तो बाबा का ही कार्य, लेकिन ग्राम विकास विभाग ये कार्य कर रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी है और आपका बहुत बहुत स्वागत भी है। और हम आज आपसे सुनेंगे कि ईश्वरीय सभ्यता और ब्राह्मण जीवन क्या है, इस विषय पर आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे आदरणीय भ्राता राजू भाई जी।
ओम शांति। बाबा की इस चरित्र भूमि में योग तपस्या का अपना ही आनंद है, ऐसा है ना? पहली बार आपको ये गोल्डन चांस मिला है, मैं समझता हूँ सभी बाबा की इस चरित्र भूमि में पहली बार ही रहे होंगे, जो इसके पहले रहे वहां तो उठाओ, कुछ कुछ हैं, बहुत थोड़े हैं, बाकी सब पहली बार वाले ही हैं। बाबा ने मधुबन को, इस किले को बहुत सुंदर वरदान दिए हैं, इस स्थान पर आने वालों को योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज स्वतः योगी बन जाते हैं, क्योंकि बाबा ने खुद यहाँ तपस्या की है, ये उनकी चरित्र भूमि, कर्म भूमि, तपस्या भूमि है। जिधर भी जाएंगे बाबा की याद आ जाएगी, और साथ साथ हमारी दादियों ने भी इस भूमि पर, मम्मा ने, दीदी ने, दादी ने, सब ने बहुत अच्छी हम सब की पालना की है। इस भूमि पर आपको भट्टी करने का चांस मिला, सबसे पहले इसकी आप सबको मुबारक हो, बधाई हो। आज मुझे कहा गया ईश्वरीय सभ्यता और ब्राह्मण जीवन, हम सभी बाबा के बच्चे जिस दिन से बाबा को पहचानते हैं, बाबा को बाबा मानते हैं, कहते हैं, उस दिन से हमारा नया जन्म हो जाता है। जिसको मर्जीवा ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता, तो आप सभी जो इस तपस्या भट्टी में आए हैं, अपने आप को पक्का सच्चा ब्राह्मण तो समझते ही होंगे, क्योंकि डबल विदेशी ये शब्द बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं। ये पक्का ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है। तो आप सब पक्के ब्राह्मण हो, समझते हो? जो पक्के ब्राह्मण समझते हैं हाथ उठाओ सब। अच्छा, तो पक्के ब्राह्मणों को ब्राह्मणों की परिभाषा में क्या सुनाऊं? क्योंकि इस मर्जीवा जीवन में जब से हम बाबा के बने, जो साधारणता थी, लौकिकता थी, वो जड़ से समाप्त हुई। अगर नहीं हुई है तो ब्राह्मण भी हैं, तो कभी कभी शूद्रपने के संस्कार भी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग करने की बात है। ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये हमारा पढ़ाई का लक्ष्य है। और पक्के ब्राह्मण हैं तो फरिश्ता सहज ही बन जाएंगे। इसलिए पक्के ब्राह्मण किसको कहें, उन ब्राह्मणों की क्या क्वालिटी, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, उस पर थोड़ी सी नजर मैं आपके आगे रखता हूं कि आप सब चेक करना। जब से ब्रह्मा मुख से जन्म हुआ, लौकिक कोई भी जाति थी, कोई भी सरनेम था, बाबा ने उसे परिवर्तित कर दिया। मुझे याद है, जब तक मुझे कोई लौकिक कार्य अर्थ पासपोर्ट वीजा नहीं बनाना पड़ा, तब तक मुझसे किसी ने अपना सरनेम नहीं पूछा था। यहाँ कोई को पता ही नहीं था मेरा सरनेम क्या है, क्योंकि बाबा ने लौकिक जीवन को समाप्त करा के अलौकिक जीवन दे दी। इसलिए लौकिकता का कोई भान ही नहीं रहा कि ये भी कोई सरनेम होते हैं। ब्राह्मण जीवन में लौकिक जाति की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि लौकिक में जो ब्राह्मण जाति कहलाती है, उनका भी कुछ अलग ही अपना मान और मर्तबा संसार में चलता है। हर श्रेष्ठ कार्य में, अच्छे कार्य में ब्राह्मणों को याद किया जाता है, उनको आगे रखा जाता है, उन्हीं से कराया जाता है। शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो वो लौकिक जीवन में ब्राह्मणों का अपना महत्व रहा है, लेकिन हम सब अलौकिक ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माना संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण स्वच्छ। जिनकी अगर एक सुंदर व्याख्या दी जाए, तो उनकी पूरी ही जीवन कहानी के अंदर उनके संकल्प, उनके बोल, उनकी स्मृतियाँ, उनकी वृत्तियाँ, उनकी दृष्टि, उनके कर्म, उनकी सेवाएं, उनके संबंध, एक पूरी डिटेल में ब्राह्मणों को अगर हम सामने ला करके अपने आप से पूछें, क्या सचमुच मैं बाबा का मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाने के हकदार हूँ, पक्का ब्राह्मण हूँ या कच्चा पक्का हूँ? अगर संकल्पों में अभी तक भी व्यर्थ की अधिक मात्रा है, आते हैं सबके आगे व्यर्थ, ऐसा कोई भी ब्राह्मण अभी ये नहीं कहेगा कि मैंने व्यर्थ को संपूर्ण रीति से जीत लिया है। व्यर्थ नहीं आता, बाबा को अभी तक मुरली चलानी पड़ती है, बच्चे व्यर्थ को समाप्त करो। और व्यर्थ आने के कई कारण हैं। अगर हमने अपनी बुद्धि को ज्ञान योग में बिजी नहीं किया है, सकारात्मक चिंतन से बिजी नहीं किया है, जगह रखी है, तो उसमें व्यर्थ आ सकता है। और जो संपूर्ण अपने आप को ज्ञान योग मनन चिंतन में व्यस्त रखते हैं, तो मन एकदम स्वच्छ निर्मल बन जाता है। तो सबसे पहले उसके संकल्प की क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है। साधारण संकल्प, नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प, उसे परेशान नहीं करते। अगर आते भी हैं तो आते और जाते हैं, उस पर परवाह नहीं करता। तो चेक करना है कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। जो कुछ मैं देखता हूं, जिस वातावरण में रहता हूं, जिनके संग संपर्क संबंध में आता हूं, हमारे संकल्प उनसे प्रभावित होते हैं, उस पर उनके संग का रंग लगता है, या मेरे संकल्प इतने पावरफुल हैं, इतने शक्तिशाली हैं, जो मेरा प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता और वो हमारे संकल्पों से परिवर्तित होते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सबसे पहली यही परिभाषा है कि ब्राह्मण माना शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ संकल्प रचने वाले, बहुत अच्छे पॉजिटिव चिंतन में रहने वाले। अगर कोई बात नेगेटिव दिखाई भी दे तो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दें। व्यर्थ आ जाए तो व्यर्थ को उसी समय स्टॉप करके समर्थ संकल्पों में आ जाएं। तो व्यर्थ के कई कारण हैं, मैं आपको चार पांच कारण सुना देता हूं, ध्यान देना क्या इसी कारण से व्यर्थ आते हैं। सबसे पहले, अगर बुद्धि फ्री है, अच्छे चिंतन में व्यस्त नहीं रहते, मनन चिंतन नहीं करते ज्ञान का, तो व्यर्थ को आने की मार्जिन मिलती है। दूसरा, जिधर भी देह, संबंध, पदार्थ, कोई भी वस्तु वैभव की तरफ थोड़ा भी लगाव है, आकर्षण है, तो भी संकल्प उसी तरह से प्रभावित होते और व्यर्थ संकल्पों की लाइन लगती है। तीसरा, अगर आप देखेंगे जरा भी कोई श्रीमत में मन मत ऐड कर रहा है, अपने मन मत के आधार से श्रीमत को यूज कर रहा है, तो भी वो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त नहीं रह सकता है। तीसरा, कोई भी बात देखते सुनते मन के अंदर दुविधाएं पैदा होती हैं, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न उठते हैं, तो वो भी एक व्यर्थ की क्यों लगा देते हैं। अगर और भी देखा जाए, संपूर्ण रीति से हम कोई भी नियम मर्यादा जो बाबा ने हमें ईश्वरीय कायदे सिखाए हैं, अगर उन कायदों का उल्लंघन हो जाता, आज्ञाओं की अवज्ञा हो जाती, तो भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है, कंट्रोल नहीं होते। ऐसे अगर हम सब चेक करें अपने आप को, इस मर्जीवा जीवन में व्यर्थ को मैंने कहां तक जीता है। सच्चे ब्राह्मण माना व्यर्थ से मुक्त, सदा श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों में रमण करने वाले, और बोल भी इतने सम्मानजनक, आदर पूर्वक हों, सबको रिस्पेक्ट देने वाले, मधुर हों, जिसमें कोई भी हमारे बोल से डिस्टर्ब न हो जाए। बाबा हमेशा कहते हैं, ब्राह्मणों के बोल अनमोल मोती के समान होंगे। तो चेक करना है सचमुच, जब से मैं ब्राह्मण बना हूं, मेरे बोल कैसे हैं। कोई भी बात देखते सुनते मेरे बोल उनके प्रति, उनकी कोई कमी कमजोरी देख करके इस प्रकार के तो नहीं निकलते जो ब्राह्मण आत्माएं उन्हें श्रापित कर दें। चेक करना है कि ये बोल सबकी भलाई के लिए आशीर्वाद देने वाले हैं या श्रापित करने वाले हैं। ब्राह्मण आत्माओं के बोल कभी कभी किसी किसी को लग जाते हैं, क्योंकि जब हम पवित्रता की धारणा करते हैं, पवित्र स्वरूप में रहना अभ्यास करते हैं, तो पवित्र आत्माओं में एक अपनी अलौकिक शक्ति निर्माण होती है, और उस अलौकिक शक्ति के आधार से जो बोलते हैं वो होने लगता है। तो चेक करना, कभी भी ऐसे बोल तो किसी आत्मा के प्रति, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, मेरे मुख से तो नहीं निकलते जो उस आत्मा की स्थिति को बिगाड़ दें। वो बना रही है और हम बोल दें वो बिगड़ जाए स्थिति उसकी, तो ये भी उसके लिए बद्दुआ, श्राप हो जाता है। तो बहुत ध्यान देना है बोल के ऊपर। तीसरा, अपनी वृत्तियों को हम चेक करें कि मेरी वृत्तियां कितनी अनासक्त, कितनी उपराम, सबसे न्यारी और प्यारी बनी है, क्योंकि वृत्तियों से दृष्टिकोण का निर्माण होता है। इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं कि इसका एटीट्यूड ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है, वो वृत्तियों के आधार से बनता है। इसलिए चेक करना है मेरी वृत्तियां किस प्रकार की हैं, आंतरिक वृत्तियां, जिससे वायुमंडल बने, अच्छा वाइब्रेशन बने। तो वृत्तियों में निस्वार्थ भावनाएं, उपरामता, अनासक्ति आई है। और स्मृतियां कहे कैसी हैं, कुछ भी पास्ट में हुआ है, ब्राह्मण जीवन के पहले शूद्र जन्म में जो कुछ भी हुआ है, क्या उन्हीं आधार से अभी तक हमारी स्मृतियां बनी हुई हैं, या सचमुच मैं उस जीवन से मर गया, उस जीवन को हमने समाप्त करके नया जन्म ले लिया, तो नए जन्म में पुराने जन्म की कोई भी स्मृतियां तो नहीं है, क्योंकि वो स्मृतियां बहुत परेशान करती हैं आत्माओं को। लौकिक जीवन में भी अगर कोई को पास्ट जन्म की स्मृति रहती है, कोई बच्चा नया जन्म लेता है, थोड़ा सा बोलना चलना शुरू करता है और उसको पास्ट जन्म याद आ जाता है, तो घर में हलचल मच जाती है, वो पता नहीं क्या क्या कहने लगता है कि मैं इसका पिता हूँ, इसका पति हूँ, इसका बाप हूँ, और घर में और परिवार के अंदर कलह पैदा कर देता है पास्ट जन्म की स्मृतियों के आधार से। हम भी देखें कि इस ब्राह्मण जन्म में, इसी जन्म में जो पास्ट जन्म था, शूद्र जन्म था, उस जन्म के कोई भी करतूत, कोई भी ऐसा कार्य मुझे बार बार डिस्टर्ब तो नहीं करता है। मैंने उन स्मृतियों को ब्रेक दिया है ब्राह्मण जीवन में कि मुझे उन स्मृतियों को दोहराना नहीं है, उनको बार बार स्मृति में लाना नहीं है, उनको वर्णन नहीं करना है कि मैंने ये किया वो किया। एक बार सोच करके बाबा के बने और बाबा को अपना जीवन लिख करके दे दिया, बाबा ये पास्ट जीवन मेरा था, बाबा ने स्वीकार किया, बाबा ने देखा और बाबा ने उसको समाया, समाप्त कर दिया, उसकी बार बार स्मृतियां ना आए। स्मृतियों में वर्तमान ब्राह्मण जीवन का भाग्य, भगवान की स्मृति, निरंतर एक की स्मृति, और अपने आने वाले भविष्य के जीवन की स्मृतियां बार बार रिवाइज करो। सचमुच ऐसी स्मृति संपन्न समर्थ जीवन है, या पास्ट की स्मृतियां मुझे बार बार डिस्टर्ब करती है, चेक करना। हमारे कर्म कैसे हैं, सुख देने और सुख लेने वाले हैं, या अभी भी हम कोई न कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं जो दुखी होते भी हैं और दुखी कर भी देते हैं। कई आत्माएं कहती हैं मैं दुख देता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मुझे देता है तो ले लेता हूं, दुखी हो जाता हूं। बाबा कहता है ये भी दुख देना भी गलत है ब्राह्मण जीवन में, न दुख दो न दुख लो। अगर कोई ऐसे आपको दे भी रहा है और आप नहीं लेंगे तो चीज किसके पास जाएगी, देने वाले के पास रिटर्न हो जाएगी ना। अगर आप ले लेंगे, दुखी हो जाएंगे तो परेशान होते रहेंगे, क्यों बोला, क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो सोचा ही नहीं था। इसलिए ब्राह्मण जीवन का कर्म है सुख देना सुख लेना, न दुख दो न दुख दो लो। ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी सेवा है, सेवा के बिना ब्राह्मण नहीं रह सकते, ब्राह्मणों का श्वास सेवा है। लेकिन सेवा के बीच में चेक करना है, बिगड़ी को बनाने की सेवा है या बना रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। अगर कोई की स्थिति बिगड़ रही है मेरी सेवा से, कोई स्थान पर हलचल पैदा हो रही है मेरी सेवा से, कोई स्थान पर डिस्टर्बेंस हो रही है, तो बाबा कहता है ऐसी सेवा न करो तो अच्छा है। बहुत अच्छी सेवा तुमको बाबा ने बताई है, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से मनसा सेवा करो, मनसा अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ। अगर सेवा में खुद डिस्टर्ब हो गए, अपने साथियों को डिस्टर्ब कर दिया, अपने सेवा स्थानों पर डिस्टर्बेंस कर दी, वो सेवा सेवा नहीं कहलाती। तो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का शौक भी रखें, लेकिन सेवा करते हुए अपसेट न हो जाएं और न किसी को कर दें। सेवा है ही बिगड़ी को बनाने की, बाबा आता ही है बिगड़ी को बनाने के लिए, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। और जब सेवा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कहते हैं सेवा माना सुख देना। सेवा उसी को कहते हैं जहाँ सब सुखी रहे, भाई इसकी सेवा इसको मिली, ये सेवा पर है, माना वो सुख दे रहा है। तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं, बाबा अभी अभी संदेश हम भाइयों की भट्टी में आया था नीचे, निरंतर सेवाधारी बनो। अब सेवा का समय है, सेवा के बिना एक सेकेंड भी नहीं रहना, कैसे सेवा निरंतर हो। सोते भी सेवा, चलते भी सेवा, खाते भी सेवा, जिस प्रकार के कोई भी कर्म हम ब्राह्मण जीवन में कर रहे हैं, हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारे हर कर्म से सेवा होती रहे, लोग देख करके उससे प्रेरणाएं प्राप्त करें, मनसा से एक शक्तिशाली वायुमंडल बने, वाचा से ज्ञान देकर किसी का जीवन चेंज कर दें, कर्म से गुणों का दान करके किसी को गुणवान बना दें, ये सेवा है। तो चेक करना सचमुच ब्राह्मण जीवन में मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। बाबा भी सेवाधारी बन करके आता है और बहुत निर्माणता से आता है। बाबा की वाणी हम सुनते हैं, बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बहुत निर्माणता के शब्द हैं, इतना बड़ा विश्व का पिता, विश्व कल्याण करने के लिए सृष्टि पर अवतरित होता है, लेकिन इतनी बड़ी सेवाएं करते हुए कितना नम्रचित, कितना निरहंकारी है। अगर कोई आत्माएं सेवा करें और थोड़ा सा उसका अहम दिखाएं कि मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूं, मैं नहीं करता तो ये सेंटर नहीं बनता, मैं नहीं होता तो ये नहीं हो सकता, मेरी बुद्धि की विशेषता है, मेरी कलम की विशेषता है, मेरे धन की विशेषता है, वो लगी है तो ये सेवाएं हो रही हैं, बाबा को किसी का भी अहम स्वीकार नहीं होता। इसलिए आप अगर देखेंगे तो अगर कोई भी ऐसी मधुबन के अंदर भी इतनी डिपार्टमेंट्स चल रही हैं, हम लोगों को बाबा ने जो सेवाएं दी हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है मधुबन की सेवाओं को देख करके। शायद आप लोगों को पता हो कि जिस सेवा पर मुझे बाबा ने बिठाया है वो ऐसी सेवा है जो बहुत बुद्धिमान को इस स्थान पर बैठना चाहिए, बहुत पढ़े लिखे को, बहुत डिग्री लिए हुए को जिस सेवा पर मुझे रखा है, लेकिन ऐसी सेवा पर अनपढ़ को बिठाया है जो मैंने कोई कॉलेज नहीं देखा, यूनिवर्सिटी नहीं देखी, 15 साल में तो आ गया मधुबन में, तो समझ सकते हो कितनी पढ़ाई होगी। और जो बहुत बड़े गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां लिए हुए हैं, उनको भंडारे की सेवा पर रखा है। कहने का भाव मेरा ये नहीं है कि ऐसा क्यों किया है, बाबा का शायद निर्णय ऐसा है, लेकिन कोई ये न कहे कि ये पढ़ा लिखा है ये इसलिए कर रहा है। बाबा हम बच्चों के अहम को मार करके बहुत निरहंकारी स्वरूप में देखना चाहता। कोई भी कोई सेवा करे लेकिन उसको आ जाए कि मैं नहीं होता तो कोई नहीं करता, तो बाबा कहता मैं कोई से भी करा सकता हूं। इसलिए किसी भी प्रकार का अहम सेवाओं के क्षेत्र में मुझ आत्मा को ना आ जाए कि मैं कर रहा हूं। ब्राह्मण जीवन में ये भी एक लौकिकता अथवा शूद्रपन का संस्कार है। जिनको अपने पद पोस्ट पोजीशन का अहम है, ये ब्राह्मण जीवन में नहीं हो सकता। हम बच्चों को बाबा ने केवल राजयोगी का टाइटल जरूर दिया, लेकिन टाइटल देकर के ये नहीं कहा कि राजयोगी का भी अहंकार रखना। भले योगी हैं लेकिन बहुत निरहंकारी, बहुत नम्र चित्त है। कहीं किसी के आगे हम नहीं कहते हम योगी हैं। अगर हम सचमुच योगी हैं तो दिखाने की क्या बात है, बोलने की क्या बात है। तो हमारे योग के वाइब्रेशन सेवा करें, हमारा व्यवहार बताए कि योगी है, हमारे कर्म बताएं योगी है, हमारे बोल बताएं योगी है। मैं क्यों कहूं मैं योगी हूं? अगर सचमुच मैं योग कर रहा हूं तो हमारा आभा मंडल कैसा होगा, जहां पर जिस स्थान पर रहे वो स्थान कैसा होगा, कितना वो चार्ज स्थान होगा। अगर उस स्थान पर आप आ जाएं, बैठ जाएं, कोई भी चला जाए, कहना न पड़े कि यहां योगी रहता है, अपने आप उस स्थान का वायुमंडल चार्ज होता रहता है। क्योंकि अच्छे वाइब्रेशन, योगी माना क्या, जिसका कनेक्शन परमात्मा के साथ जुटा हुआ है, उसकी लाइट और माइट जिसके ऊपर आ रही है, उसका आभा मंडल ही एक अलग प्रकार का होगा। उस जिस स्थान पर वो रहेगा वही एक अलौकिक स्थान होगा। वहां स्वच्छता होगी, दिव्यता होगी, पवित्रता होगी, मधुरता होगी, सब वैल्यूज उस स्थान पर कायम होंगी, क्योंकि उसका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे अपने इन सब विशेषताओं को चेक करें, सचमुच ब्राह्मण जीवन में कितनी दिव्यता मेरे अंदर आई है, दृष्टि की पवित्रता कहाँ तक है, निर्मलता कहाँ तक है। क्योंकि हम बहुत सी बातों की धारणाएं कर लेते हैं। ब्राह्मण बनते हैं सबसे पहला हमें बताया जाता है ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना। और मैं समझता हूँ चाहे जितनी मार्केट अच्छी से अच्छी खाने पीने की बनी हुई सजी हुई हो, कोई भी ब्राह्मण आत्माओं को मिठाइयों की दुकान पर जाकर के, बाजार में जाकर के खाने की दिल नहीं करती होगी। खाता है कोई? खाता है कोई? इच्छा होती है खा लूं मैं, ये तो बहुत अच्छी मिठाई है, मैं तो बहुत खाता था पहले। जबान में पानी आता है? नहीं आता है। कोई कोई को आ जाता होगा, नहीं? मैं समझता हूं उससे तो एकदम हम सबको नफरत ही आ गई है कि ये नहीं खाना, क्योंकि ये बनाने वालों के विचार उस पर अशुद्ध हैं, बनाने वालों की वृत्तियां, उनकी धारणाएं, उनकी जीवन गंदी है, इसलिए हम उनके हाथ का नहीं खाते हैं। और साथ साथ अगर वो भोग भगवान की याद में नहीं बनाया गया है, तामसिक वृत्तियों से है, तामसिक चीजें हैं, तो उस पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। कोई खाता है लहसुन प्याज अभी तक? नहीं खाता है कोई? नहीं खाते हैं ना? अगर ब्राह्मणों के घर में हम जाएं और इसकी बदबू आ रही हो तो इच्छा ही नहीं होगी जाने की। इसलिए ब्राह्मणों का घर कैसा होगा? आश्रम होगा। और आश्रम में भी अगर कहीं बदबू आ रही हो तो, एक बार मैं एक आश्रम में गया, पांडिचेरी में एक आश्रम है माता जी का, सुना होगा आप लोगों ने। तो अचानक मैंने कहा मैं भंडारा देखना चाहता हूं यहां का, तो भंडारे के अंदर ले गए। तो जब भंडारे में प्रवेश हुआ तो मेरे को पहले प्याज की बदबू आई, और मैं वहां भी वहीं खड़े होकर के पूछा, आप लोग आश्रम वाले प्याज खाते हैं क्या? तो कहते हैं यहां पर तो कोई छूट, कोई भी कोई चीज बना के खा सकता है। मैंने कहा ये तो अच्छी, जहां आश्रम शब्द आया है वहां पर कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता, कितनी स्वच्छता होनी चाहिए। जिस चीज से बदबू फैल रही है, गंध फैल रही है, वो आश्रम कैसे कहला सकता है? मैंने उसी समय उसको टोक दिया। और कई आश्रम हैं बहुत अच्छे अच्छे हैं, वहां पर भी मैं गया हूं, वहां जाते ही बहुत अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, जहां ऐसी चीजें कोई टच भी नहीं करता है। बाबा ने घर गृहस्थ को आश्रम बनाया है, ध्यान देना। एक आश्रम में आप नहीं आए हैं, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम कोई एक आश्रम नहीं ये स्थान, लेकिन बाबा ने हर घर को आश्रम बनाया है, हर घर को मंदिर बनाया है। चाहे हम प्रवृत्ति में रह रहे हैं लेकिन पवित्र प्रवृत्ति हम कहलाते हैं, हम गृहस्थी नहीं हैं। जिनका पूरा परिवार ज्ञान में है, जिनके अंदर चलो कोई एक है एक नहीं है तो कुछ भी हो सकता है नीचे ऊपर, लेकिन जो सब एक मत वाला परिवार है, ज्ञानी है, उस घर में तो कोई भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र। जितनी सफाई, जितनी स्वच्छता, जितनी व्यवस्थित है, उतना उसकी अवस्था अच्छी मानी जाती है। अगर घर के अंदर कीचड़ा लगा हो, घर के अंदर व्यवस्थाएं ठीक न हो, घर आश्रम नहीं कहला सकता है। आश्रम में जहां जाने से आश्रय प्राप्त हो, जहां जाने से शांति की अनुभूति हो, पवित्रता की अनुभूति हो, ऐसे घर में हम जा रहे हैं, रह रहे हैं, जहां हम भगवान का डायरेक्ट आवाहन करते, जहां हमारे घर में भगवान को भोग लगता, उसको हम मंदिर कहते हैं। इसलिए एक एक ब्राह्मण का, ब्राह्मणों के घर इतने स्वच्छ, जैसे ये मन मंदिर स्वच्छ है, इसमें कोई अशुद्धता नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई की कमी और कमजोरियां नोट नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं। एक व्यक्ति भक्ति के अंदर अमृत वेले में उठने का बड़ा शौक था, बहुत अच्छा उसको अभ्यास था, सवेरे सवेरे उठता था। एक बार वो यात्रा पर गया अपने पिताजी के साथ, बेटा नियमित था, रोज सवेरे उठ के भगवान का ध्यान करता था। तो जब एक स्थान पर वो गया तो वो अकेले उठ करके ध्यान करने लगा और दूसरे सब सोए हुए थे, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। और बड़ा गुस्सा आकर के वो कहता है अपने पिताजी को कि देखो भगवान को ध्यान करने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है, अमृत वेला है, कितनी भगवान से प्राप्तियां होती हैं और ये सब मूर्ख लोग सोए पड़े हैं। तो उसका पिताजी कहता है बेटा तुम भी सो जा। क्यों सो जा? तूने इसलिए नहीं जग करके तपस्या की तो सबकी कमियां नोट करता रहे, इससे तो सोना अच्छा है कमियों को नोट करने से। सो जाओ जा करके, क्या जरूरत है योग करने की तुमको, इसलिए थोड़ी उठे हो कि जो सबकी कमियों को नोट करते रहो। तो ये भी एक मन के अंदर की गंदगी है जो हम दूसरों की कमियों को नोट करते हैं, और ब्राह्मण आत्माओं के अंदर इस प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए मन के अंदर। जिसका जितना मन स्वच्छ है, निर्मल है, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं, कोई कुछ भी कर रहा हो, हर आत्मा का अपना अपना रोल है, पार्ट है। हम तो अपने बाबा को भी देखा, अव्यक्त बाबा को भी देखा, साकार में भी अनुभव किया, दादियों को भी हम सब देख रहे हैं। उनको नहीं पता है कि मेरे अंदर या इसके अंदर क्या कमी है, लेकिन कभी भी वो वर्णन चिंतन नहीं करते, उनके पास वो नोट नहीं रहता कि ये व्यक्ति ऐसा है। हर आत्मा का अपना रोल, हर आत्मा की अपनी विशेषताएं हैं, और बाबा ने हमारी विशेषताओं को देख करके इस यज्ञ को इतना बढ़ाया है। अगर बाबा ने हमारी कमियों को देखा होता तो न मैं यहां होता, न यज्ञ बढ़ता, न ये सेवा कर सकता। जिसके अंदर जिस प्रकार की क्वालिटी है, जिस प्रकार की विशेषता है, बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी कि अगर 36 में से किसी बच्चे के अंदर 35 अवगुण हैं, फिर भी एक तो कोई गुण होगा, मैं उस एक गुण को ही देखता हूं और उस गुण को उसकी सेवा में कार्य में लगा करके उसको गुणवान बना देता हूं। सब गुण उसके अंदर आ जाते हैं और सारे अवगुण उसके छिप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसा है हमारा बाबा, जो किसी की कमियों को, किसी की कमजोरियों को उसने आज तक नोट नहीं किया, और विशेषताओं को देख करके, विशेषताओं की वर्णन करके, उनकी विशेषताओं को सेवा में लगा करके आज हम सबको भी स्टेज तक पहुंचाया और यज्ञ को इतना समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। हम सभी भी ध्यान रखें अपने इस ब्राह्मण परिवार के अंदर हर आत्मा विशेष है, जिसने भगवान को पाया है, जिसने बाबा को बाबा कहा है, दिल से पहचाना है। बाबा कहता है मेरा 9 लाख का भी जो लास्ट मणका है ना, वो भी आज के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बड़ा है। इतनी ऊंची नजर से बाबा उसको देखता है, क्योंकि वो आत्मा भगवान को बाबा कह करके याद करती है, उनको पता ही नहीं भगवान कौन है। तो हम सभी बाबा के ब्राह्मण बच्चे सदा ध्यान रखें, बहुत जाहिर संस्कार चाहिए। सभ्यता की जब बात मुझे कही गई, ईश्वरीय सभ्यता क्या है, तो सभ्यता माना ही कभी भी सभ्य लोग, रायल लोग किसी की कमियों कमजोरियों को नोट नहीं करते, किसी की चीज पर दृष्टि नहीं डालते। रायल्टी की परिभाषा कई बार साकार ब्रह्मा बाबा के अनुभव में हम सबने सुनी है, क्योंकि बाबा का राजाओं के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है। लौकिक जीवन भी, व्यापार भी बाबा का राजाई घराने में अधिक था। बाबा कई बार उनका मिसाल देते हैं कि राजाएं कभी भी कोई चीज खरीदनी भी होती थी तो सिर्फ दृष्टि डालते थे, भावताव नहीं करते थे। कहते थे ये चीज ठीक है, मंत्री को इशारा करते थे, वजीर को इशारा करते थे, ये ले लो, कितने की है नहीं, ले लो। इतनी उनकी ऊंची दृष्टि, माना रॉयल्टी ये है कि वो आत्मा भरपूर है। हम सभी भी ब्राह्मण जीवन के अंदर जितना भरपूर हैं, गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से, स्थूल सूक्ष्म सब खजानों से, भरपूरता जरूरी है। खाली ही है ही नहीं, और फिर मैं कहूं मैं तो ठीक हूं। ब्राह्मण जीवन माना भरपूर संपन्न। ब्राह्मणों के लिए गायन है, बाबा की मुरलियों में सुना होगा, पहले बाबा कहते थे देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, अभी हम मुरलियों में सुन रहे हैं अव्यक्त बाबा की, ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, अप्राप्त शक्ति नहीं। अगर हम ब्राह्मण हैं तो क्या सचमुच मैं आत्मा हर गुण से, हर शक्ति से, हर खजाने से भरपूर अनुभव करती हूं? मैंने अपने आप को भरपूर बनाया या खाली है? कोई दूसरा भरपूर करने के लिए नहीं आएगा आपको, हर एक को अपने आप को खुद भरपूर करना है। बाबा ने सब कुछ दिया है, और ये भी है कि सबको एक जैसा दिया है। वही मुरली है, दादियां भी पढ़ रही हैं, 76 साल 75 साल जिनको, वो भी पढ़ रहे हैं, और अगर एक हफ्ते 15 दिन का स्टूडेंट है वो भी वही मुरली पढ़ रहा है। हर एक के लिए वही मुरली है, वही कोर्स है, वही योग है, कोई अलग अलग नहीं है। ये कोई स्पेशल किसी के लिए ट्यूशन नहीं है, स्पेशल कोई के लिए टीचर्स नहीं है, सबको एक जैसी पढ़ाई है, एक जैसी पालना है, एक जैसे नियम है, एक जैसी मर्यादाएं हैं। अलग अलग हैं क्या? ऐसे तो नहीं है सन्यासी हम बने, हमने समर्पित किया है, सरेंडर हो गए, तो हमारे लिए अलग कोई मर्यादाएं बना दी बाबा ने, और आप प्रवृत्ति में रहने वाले हो आपके लिए अलग कोई मर्यादाएं बता दी। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं होगा। जैनियों के पास हम जाते हैं, देखते हैं साध्वी हैं, बड़े पवित्र हैं, स्वच्छ रहते हैं, पवित्रता उनके जीवन में, स्वच्छता तो नहीं हम कहें लेकिन पवित्रता तो है। लेकिन वो पवित्र हैं तो ये नहीं प्रवृत्ति वालों को कहते हैं तुम भी पवित्र रहो, खान पान की तो भी परहेज कर लेते हैं, लेकिन जैसी उनकी जीवन है वो अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को बना दें, ऐसा नहीं है। हमारे बाबा ने सबको एक जैसी सब नियम मर्यादाएं धारणाएं श्रीमद दी है, सबको एक जैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है। हमने उस ज्ञान को जितना मनन किया है, चिंतन किया है, घोटा है, अपना बनाया है, वो हमारा बन गया। सिर्फ सुन लिया और निकाल दिया, अपने अंदर नहीं आया। एक है अध्ययन और एक है स्वाध्याय, बहुत बड़ा अंतर है। अध्ययन तो हम पाठ पुस्तकों का करते ही रहते हैं, मुरली का अध्ययन कर लिया, कोई पुस्तक मिली पढ़ लिया, पढ़ना अलग चीज है, लेकिन स्वयं को स्वयं पढ़ाना स्वाध्याय है। पढ़ना अलग चीज है, अपने आप को पढ़ाना अलग चीज है। पढ़ाना माना उसकी गहराई में जाना, मनन करना, चिंतन करना, उसको अनुभव में उतारना, उसके लिए कुछ प्रयास करना। पढ़ लिया भूल गए, उसको अध्ययन कहा जाता है। इसलिए हरेक ब्राह्मण आत्मा अगर सचमुच सच्चा ब्राह्मण बनना है, पवित्र पक्का ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, तो उसके लिए अपने आप को अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ने और पढ़ाने पर संपूर्ण ध्यान, पढ़ाई पर संपूर्ण ध्यान। इसलिए बाबा ने जो हमारे नियम बनाए हैं, हम कहते हैं कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। 2 बजे उठ गए, 1 बजे उठ गए, हठ किया, बाबा ने सब हठ क्रियाएं हमारी बंद करा दी। टाइम टेबल बनाया है, ब्राह्मण की दिनचर्या और टाइम टेबल जो मधुबन में बना हुआ है, हर ब्राह्मण अगर युक्तियुक्त यथार्थ रीति से इसका पालन करे तो वो पक्का ब्राह्मण बन जाएगा। अमृत वेले उसको 3:30-4 के बीच में उठ जाना है, और उठते ही पहले संकल्प में बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है। पहले कोई कारोबार याद नहीं आए, पहले कोई दूसरी बातें याद ना आ जाएं, पहले संकल्प में बाबा सामने आ जाए। इतना बाबा से सच्चा संबंध, इतना बाबा से सच्चा प्यार, और ऐसी नींद जो आंख खुलते ही बाबा सामने आए। अगर नींद में दूषितपना है, दूषित नींद है, कच्ची पक्की नींद है, तो भी बाबा नहीं आएगा। या सोते समय आप टीवी सीरियल देख करके सो रहे हैं, कोई ऐसे मनोरंजन करके सो रहे हैं, हंसते बहलते सो रहे हैं, व्यर्थ वार्तालाप करके सो रहे हैं, बाबा कहता है कभी कभी मैं बच्चों के घर में चक्कर लगाता हूं। आता है आप लोगों के घर में है? आता है नहीं आता है? आता है, क्या देखता है? सब अच्छा दिखता है उसको कि कुछ गलत दिखता होगा? कहता है मैं बच्चों के पास जाता हूं, कभी कभी देखता हूं ये बहुत बातें करते हुए सोते हैं, इधर उधर की बातें, जिनका कोई काम नहीं। मिले रात को, चलो दिन भर तो मिले नहीं, रात को मिले तो कम से कम लेन देन तो कर लें। बाबा कहता है ये कमरा जो है वो आपका शरण स्थल, सोने का जो स्थान है, उस स्थान को भी बहुत शुद्ध और पवित्र बना करके रखो। उस स्थान पर, उस कमरे के अंदर कभी भी व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना। अगर कोई बहुत जरूरी काम करना है तो बाहर थोड़ी देर बैठ करके कर लो, नहीं तो आपकी नींद दूषित हो जाएगी, आपके सपनों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और आपका अमृत वेला अच्छा नहीं होगा। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 15 मिनट बहुत अच्छी बाबा के साथ रू रिहान करके, बाबा को सारे दिन का पोता मेल सुना करके, और बाबा की गोदी में सो जाओ 1 सेकंड में। क्यों नींद ना आए, क्यों गोली लेनी पड़े, क्या टेंशन है, सब सुना दो बाबा को। बाबा ये आपका, जहां मेरा मेरा है वहीं फेरा है। जिसने अपने को मेरा मेरा में फंसाया हुआ है ना, वो फेरे में फंसा हुआ है। ये सब बाबा थे, जो किया जो हुआ बाबा ये तुम जान। जब बाबा अपने आप कह रहा है मैं तुम बच्चों की सब जवाबदारियां लेने के लिए आया हूं, मुझे दे दो बच्चे, हल्के हो जाओ, तो सोने के समय हल्की ड्रेस, स्थूल में भी हल्की ड्रेस कहते पहनो, लेकिन मन को बिल्कुल हल्का बना करके एकदम लाइट की ड्रेस पहन करके लाइट के वतन में ब्रह्मा मां की गोदी में सो जाओ। देखो कैसे आपको आंख खुलते ही आएगा बाबा गुड मॉर्निंग, मां उठाएगी बाप से गुड मॉर्निंग कर ले, ब्रह्मा हमारी बड़ी मां है और बहुत प्यार से उठाएगी। अनुभव कहता है कि आज तक मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ, 45-41 साल मधुबन में हो गए। बाबा मां है और बहुत प्यार का संबंध है, इसलिए अपने आप उठा देता है। लेट भी अगर सोना पड़ा, किसी कारण से आगे पीछे भी हुआ, तो भी अमृत वेला मिस नहीं होता है। गुड मॉर्निंग बाबा, कम से कम इतना तो करो। और फिर बैठकर आधा घंटा पौना घंटा अच्छी तरह से सकास लो और दो। ये हमारे लिए दिनचर्या बाबा ने बनाई है। अमृत वेले भगवान से मिलने का समय है, शक्ति लेने का, वरदान लेने का समय है, और उस समय अगर हम अलबेले हैं, सोए हुए हैं, और बाबा आकर के देख करके चला जाए, बच्चा थका हुआ है, कोई बात नहीं सोने दो, क्या देगा हमको, वो भी चला जाएगा वापस। इसलिए बहुत ध्यान देना कि जो दिनचर्या नियम बने अमृत वेले का, मुरली क्लास का। अब कोई कई ब्राह्मण कह देते हैं मुरली तो याद हो गई है, बहुत बार रिपीट हो गई, पुराने हैं, सुन लिया है, अच्छा चलो घर में पढ़ लेंगे। लेकिन आजकल साधन भी साइंस ने ऐसे दे दिए हैं, कोई को मोबाइल में मुरली मिल जाती है, कोई कंप्यूटर में मिल जाती है, कोई को टीवी से मिल जाती है, आजकल पीस ऑफ माइंड में भी आने लगी है। सुना लोगों ने सेंटर बनाना ही बंद कर दिया, कोई आते है कोई नहीं आते। बहन जी आज बहुत बिजी था ना, मैं पीस ऑफ माइंड पर देख लिया, पीस ऑफ माइंड में देखा, माइंड में पीस हो गई, आपकी गैर हाजिरी तो लग गई भगवान के दरबार में। हाजिरी का भी तो कोई महत्व तो होता है, प्रेजेंट मार्क का भी अपना महत्व तो होता है, उसकी भी मार्क्स होती हैं। और जो संगठन का बल है, जो सेवा केंद्र का एक सुंदर वातावरण है, जो बाबा के महावाक्य डायरेक्ट हम भगवान से जैसे सुन रहे हैं, उसका जो आनंद है, उसका जो रस है, वो आप कभी भी मुरली पढ़ करके नहीं ले सकते। सुनेंगे कोई दूसरी बुद्धि में ज्ञान कोई बात आ जाएगी इधर उधर की, मुरली वहीं रह जाएगी और भूल जाएंगे टीवी में क्या चला पता नहीं चला। इसलिए बहुत रेगुलर और पंचुअल ब्राह्मण आत्माएं माना डबल स्नान करने वाली, दो बार स्नान, सिंगल नहीं। स्थूल में भी बाबा कहता था सवेरे और शाम स्नान करो, फ्रेश रहोगे, सारा दिन काम करके आए हो, शाम को स्नान करके फ्रेश हो जाओ फिर योग करो। स्थूल में भी हम ब्राह्मणों को बाबा ने दो बार स्नान करने का नियम बना दिया। मधुबन में हम लोग सब भी जो रहते हैं सब दो बार स्नान करते हैं, सेंटर्स पर भी करते हैं, लेकिन ज्ञान स्नान भी दो बार जरूर करना है। अमृत वेले सवेरे की मुरली और शाम को कुछ समय स्वाध्याय, अच्छा अच्छा चिंतन, क्लास है तो ठीक है, नहीं तो योग तो जरूर करना ही है। नमाज शाम का बहुत अच्छा महत्व होता है, आप यहाँ अनुभव करेंगे। कई बार अमृत वेले नींद की लहर होती है, नींद में कई बार अनुभव नहीं हो पाते, लेकिन शाम के समय एकदम फ्रेश होकर के जब बैठते हैं तो ऐसे लगता है वतन की सैर कर रहे हैं, विश्व परिक्रमा कर रहे हैं। तो अगर नियम कोई ब्राह्मण बना ले कि मुझे अपने आंतरिक संस्कारों को परिवर्तन करना है, स्वभावों को चेंज करना है, तो उसके लिए तपस्या जरूरी है। सुबह और शाम की नियमित दीप तपस्या हो और बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, अभी तो हर घंटे एक मिनट होती है, अगर नहीं कर सकते हर घंटे दो घंटे में एक बार एक मिनट चेक करो, ढाई घंटे के बाद जो हमारे रिकॉर्ड बज रहे हैं तीन मिनट के, ये एक नियम बना लो। ये मन के संकल्पों की ट्रैफिक को ब्रेक देने के लिए है, नहीं तो थक जाओगे, बहुत सोचने से थका हुआ मन ठीक निर्णय नहीं कर सकता है। इसलिए बीच बीच में नियम के अंदर हमारे ट्रैफिक कंट्रोल है, संकल्पों की ट्रैफिक, ऐसे नहीं खड़े हो गए काम बंद करके, कोई बहुत जरूरी काम है भले कर भी रहे हैं लेकिन मन से शांत, कोई संकल्प दूसरा नहीं, बस बाबा से मिलन हो, वो संकल्प स्थिर होकर के करो, एक बाबा दूसरा न कोई। तो ये जो दिनचर्या बाबा ने बना करके दी है ये हमारे बहुत उन्नति का साधन है। आप इस नियम को यथार्थ रीति से पालन करो, आपका योग अच्छा हो जाएगा, आपकी धारणाएं अच्छी हो जाएंगी, आप बहुत लाइट हो जाएंगे, क्योंकि बाबा ने सब हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं। साथ साथ ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर सबसे पहले साधारणता और लौकिकता अभी जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लौकिक तरह से हंसना बहलना खाना पीना ड्रेस पहनना, बाबा ने हम सब की ये सब परिवर्तित कर दी। हम लोगों को भी दादियों ने जबरदस्ती ये ड्रेस पहनाई, पहले पहले यज्ञ के अंदर ये ड्रेस नहीं थे, हम जब आए हैं तो सभी पैंट सूट में रहते थे, बेकरी पार्ट था और पैंट सूट कहां से आती थी उसकी कहानी बहुत लंबी है। हांगकांग में एक माता जी रहती थी, बहुत बाबा की पक्की बच्ची थी, और वहां से वो हर साल बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पैंट सूट के कई पार्सल यज्ञ में भेज देती थी। मैं जब आया तो आते ही संतरी दादी संभालती थी स्टॉक, और संतरी दादी ने मेरी पेटी मंगाई, कि तुम्हारी अटैची ले आओ। हमने कहा दादी लोहे की अटैची मैं क्या ले आऊं, नहीं ले आओ तुम अपनी अटैची। तो जब मैं अटैची लेकर के पहुंचा यही दीदी के कमरे के पास, तो मेरी ड्रेस गांव की क्या होगी, दो ड्रेस मुश्किल से थी, टूटी फूटी ड्रेस थी। तो कहती है तुम अभी घर जाएगा ना, मैं तुमको अच्छी तरह से अटैची सजा के देती हूँ। 8 टेरिकॉट के पैंट सूट डाल दिया उसमें, सेट कर दिया, और तुम रोज नया पहनना। क्यों पहनना? हमने कहा दादी क्या जरूरत है इसकी, नहीं तुम पहनना। क्यों पहनना? लोगों को ये नहीं लगेगा कि संस्था गरीब है, इनको पता नहीं सरेंडर होंगे फिर इनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। संस्था के अंदर बहुत कुछ है, ऐसा कोई को नहीं लगना चाहिए कि ये लोगों को कुछ नहीं मिलता है वहां पर। नहीं नहीं, तुम बहुत रॉयल्टी से रहना। दादी ने एक दिन देखा हम लोगों को पैंट सूट पहनते हुए, और जो मजदूर पहनते और वही हम ड्रेस पहनते वो भी मैं पैंट सूट पहनते। तो दो बार क्या हुआ, यहां पर मारवाड़ी माताएं आती थी बिहार से, और उनको हमारे सरेंडर भाइयों में और मजदूरों में अंतर नहीं दिखाई देता था। तो जो कारपेंटर में मजदूर काम करते थे वो अपना बचा हुआ खाना, हमारे समर्पित भाई यही ड्रेस पहन के काम करते थे कलर वाली, तो अपना बचा हुआ खाना दे आते, समझते थे मजदूर हैं। तो हमारा एक समर्पित भाई को बड़ा गुस्सा आ गया एक दिन, कहता ये क्या समझती है माताएं मेरे को, मैं कोई भिखारी हूं क्या, मैं मजदूर हूं क्या जो मुझे खिलाती हैं, ये बचा हुआ खाना देके जाती हैं। तो दादी के पास रिपोर्ट गई, दादी कहती हमारे समर्पित भाइयों की माताएं ऐसा क्यों सोचती हैं, तुम्हारे चेहरे से नहीं दिखाई देता है, चलन से नहीं दिख। बोला दादी चलन और चेहरा क्या होगा, ड्रेस जो मैंने पहनी है ना यही मजदूर पहनते, यही मैं पहना हूं, इसलिए कोई उनको अंतर दिखाई नहीं देता। दादी ने कहा अच्छा, क्लास बुलाया, यहीं पर मधुबन का हम लोगों का क्लास हुआ। दीदी कहे सफेद ड्रेस देंगे तो बहुत गंदा करेंगे लोग, दादी कहे नहीं कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 4 की जगह 8 ड्रेस देनी पड़े, लेकिन मेरे पांडव कोई भी रंगीन ड्रेस टच नहीं करेंगे, कोई पैंट नहीं पहनेगा आज से, बंद, कहीं भी जाओ तुमको पैंट सूट नहीं पहनना है, तुम यही सफेद ड्रेस पहनो, ये कंपलसरी। बहनों की तो थी ही, हमारे भाइयों की भी कंपलसरी हो गई। उसी से नियम बन गया यज्ञ का, सफेद ड्रेस में रहना है। तो जो हमको बाबा ने पहनाया, जो हमको खिलाया, जिस प्रकार से हमारी पालना की, अगर सच्चे पक्के ब्राह्मण बनना है तो बाबा ने हमारे बालों का भी फैशन खत्म कर दिया, बाल तुम्हारे उड़ गए, लेकिन कोई के भी बालों, कई लोग बालों का बड़ा श्रृंगार करते हैं, कोई जूते चप्पल ऐसे पहनते हैं जो दूसरों का ध्यान चला जाए, ऊंची एड़ी फलानी एड़ी, चलेंगे तो पता नहीं क्या दिखाई देगा, कोई की कैसी ड्रेस, कोई की कैसी ड्रेस, जो देखते ही लोगों के मन चंचल हो जाए। बाबा कहता है बच्चे इन सब का त्याग करो, ये शूद्रपन के लक्षण है। तुम ब्राह्मण हो, तुम बहुत रायल हो, बहुत सभ्य हो, तुम्हारा चलना, तुम्हारी ड्रेस, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन, कोई भी न दिख कहे कि ये शूद्रों का है, ब्राह्मणों का नहीं है। बहुत रायल संस्कार हो जाए, क्योंकि हम सब अपने आप से पूछें कि सचमुच मैं देवता बनूंगा। मैं तो कभी कभी पूछता हूं, बाबा कहता मैं तुमको मनुष्य से देवता बना रहा हूं, और देवताएं कितने रायल हैं, कितने सभ्य हैं, उनका चेहरा कैसा है, उनका चलना कैसा होगा। एक बार यहां क्या हुआ, मधुबन के अंदर दो संदेशियां दो संदली पर बिठा दी, और दीदी दादी थी बड़ी रमणीक थी, बहुत मनोरंजन कराती थी सबका। तो एक संदेशी को बोला तुम नारायण की आत्मा का आह्वान करो, और एक संदेशी को बोला तुम लक्ष्मी की आत्मा का आह्वान करो। संदेशियां हो ना, जाओ बाबा के पास, बोलो सतयुग की लक्ष्मी को बाबा भेजो आज, और एक को बोला श्री नारायण को बुलाओ। तो हम लोग सब बैठे थे सभा के बीच में, एक संदेशी में श्री लक्ष्मी जी आ गई और एक कीर्तन में श्री नारायण जी आ गए। संस्कार इमर्ज हुए, आत्माएं तो वही हैं जो बाबा मम्मा है, लेकिन वो जब संस्कार इमर्ज हुए तो उनका चलना, उनका देखना, उनकी रॉयल्टी वंडरफुल थी। एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अरे वो सभा ही एकदम देवता ही हो गई। बहुत रॉयल संस्कार। तो हमने कहा कि ऐसे देवता हम लोग बनने वाले हैं, हमारे अंदरों दिव्यता है, वो रॉयल्टी है चलने में बोलने में, या फटफट 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 जो आया कर लिया, जो आया कर लिया, ऐसे ऐसे गए खा लिया, जहां का खड़े खड़े खा लिया, बोलते हैं खा रहे हैं, कितना रॉयल्टी से, मुंह नहीं चप चप होगा, बहुत शांति से, ऐसे नहीं खा रहे हैं तो मुंह से लार बह रही इधर जा रही उधर, मतलब सभ्यता नहीं है ना। कोई दो जने बात कर रहे हैं हम ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं, ये सभ्यता है क्या? कोई बात कर रहे हैं हम बीच में अपना बुद्धि का अभिमान दिखा के उसकी बात को कट कर रहे हैं, हम समझते हैं मुझे को ज्यादा इससे पता है, ये सभ्यता है क्या? ब्राह्मण माना सभ्य, समय पर सोच समझ करके बोलना, देखना, सुनना, हर बात में रॉयल्टी, ये ईश्वरीय सभ्यता, ये ईश्वरीय संस्कार हम सबके होने चाहिए। लोगों को लगे सचमुच ये देवता बनने की कॉलेज में जाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस भी कॉलेज में जाते हैं, उनकी कॉलेज होती है, और हम सब फरिश्ता सो देवता बनने की कॉलेज में आ रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो हमारा रॉयल संस्कार, हमारे चेहरे की दिव्यता, हमारे संग की सभ्यता, संग भी ऐसे वैसे का नहीं करो जो लोगों को लगे ये इसके संग में बैठता है ना, इसके कैसे रॉयल संस्कार हो सकते हैं, ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो ऐसा व्यक्ति है। इसलिए सदा संग का संभाल करके रहना, ऐसे वैसे के संग में नहीं बैठना। शराबी के संग में बैठोगे तो जरूर लोग समझेंगे ये क्या सभ्य होगा, ये भी जरूर पीता होगा कभी, इसलिए बैठा है इसके साथ। इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो रंग अपना लगा दें, प्रभाव डाल दें, वायुमंडल बना दें। हम बच्चों को संग की बहुत परहेज करें। तो ये सब ईश्वरीय कायदे, नियम, मर्यादाएं जो हम सबके लिए बनी है, पवित्रता तो हमारा मूल धर्म ही है। कभी भी स्वप्न में भी अपवित्र संकल्प टच न करें, उसके लिए आप कुछ भी दृढ़ता का संकल्प लेके जाना। दृढ़ता के बिना संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता है। कितनी भी आप मुरलियां सुन लो, कितना भी योग लगा दो, लेकिन जब तक बहुत दृढ़ता से संकल्प नहीं करोगे, जब तक व्रत नहीं लोगे, तब तक वृत्तियां चेंज नहीं होंगी। अपवित्र संस्कार इतनी जल्दी मरते नहीं है, चलते आते हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल हो जाते, 40 साल हो जाते, कभी न कभी वो मनसा में, बोल में, सपनों में अटैक कर देता है। इसलिए इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी पवित्र जीवन पर दाग ना आने दूं। पवित्रता मेरा स्वधर्म है, पवित्रता मेरी प्राण है, पवित्रता बाबा की स्थापना के लिए बहुत बड़ा बल है। सत्युग पवित्रता के बल से स्थापित हो रहा है, इसलिए इसको बहुत धारणा, दृढ़ता के साथ, धारणा के साथ, गहराई से समझ करके इसे जीवन में अपनाना है। इसके महत्व को समझो। साधारणता ये नहीं है, चल रहे हैं ठीक है, अभी कौन ऐसा बना है, बाबा तो कहता 8 ही पास होने वाले, बाकी सबको सेंटर लगेगा, ऐसी ऐसी बाबा की बातें लेकर के कभी अलबेले नहीं बन जाना। हर ब्राह्मण आत्मा भगवान के इस महान कार्य में अपना सबसे बड़ा योगदान, और कुछ न दे लेकिन अपनी पवित्रता का दे दे तो सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए बहुत शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, जहां तक हो सके उसके लिए कुछ भी करना पड़े, त्याग करो, तपस्या करो, हठ करो, लेकिन हमें कोई भी अपवित्र संकल्प टच न करें, उसके लिए कुछ न कुछ प्लान बनाओ। यहां पर अच्छी प्रतिज्ञा करके जाना जाता है कि वो संस्कार भस्म हो जाए। इसलिए बाबा कहता ज्वालामुखी योग करो, साधारण योग नहीं करो, ज्वाला में सब जल जाता है। तो ऐसी तपस्या करो जो संस्कार दब जाए, समाप्त हो जाए, फिर द्वापर में निकलेंगे, ऐसे नहीं खत्म हो गए। लेकिन सत्युग त्रेता के लिए, आधा कल्प के लिए बाबा हम सबको अपने समान संपूर्ण पावन बना करके साथ ले जाएगा, और साथ ले जा करके सत्युग और त्रेता की राजाई सौंपेगा, केवल पवित्रता के बल के आधार पर। तो हम सभी समय ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं और जो सभ्यताएं हैं उनको समझ करके चलेंगे तो बहुत रॉयल संस्कार बन जाएंगे, और अलौकिक और दिव्य संस्कारों के आधार से हम अपने चलन और चेहरे से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम शांति।
तो हम सभी जरूर अभी ही, अभी 2 मिनट योग चलेगा ना, तो मन ही मन बाबा से व्रत लेंगे, दृढ़ता का व्रत कि हम ऐसी रॉयल जिसमें ईश्वरीयता है, ऐसी रॉयल्टी, एक राजाओं की रॉयल्टी है, देवताओं की रॉयल्टी, लेकिन यहाँ है जो सुनाया भाई सब ने, ईश्वरीय रॉयल्टी। तो ऐसी रॉयल्टी को हम जरूर अपनाएंगे, बहुत ही सुंदर स्पष्ट, और बाबा की हर बात को लेकर के आपने बहुत ही सहज रीति से सबके समक्ष बाबा की ब्राह्मण जीवन की बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
Bye.